तफसीर आयत नंबर 282 सूरत अल बकरा और आयत नंबर 283 सूरत अल बकरा, यानी ये दो आयतें हैं। आज आप लोग हैरान भी हो रहे थे कि सिर्फ दो आयतें, तो आप देख लें कि ये चूंकि तवील तरीन है, ये लंबी है और इसके अहकाम समझने जरूरी हैं, तो इसलिए दो आयात का इंतखाब किया गया। तो पीछे जो अगर आप गौर करें, जो आयात हमने पढ़ी हैं, तो सूदी निजाम की सख्ती से ममानियत और सदकात और खैरात की ताकीद पढ़ी आपने, तो ऐसे माशरे में फिर क्या होता है कि कर्जों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि सूद तो वैसे ही हराम है और हर शख्स जो है वो सदका खैरात की इस्तात भी नहीं रखता, और इसी तरह हर शख्स ये भी पसंद नहीं करता कि वो सदका ले। जब सोसाइटी ऐसी हो, मुस्लिम सोसाइटी है, कि ना तो सूद ले रहे हैं और ना ही सदका लेना यूं पसंद करते हैं, खुददार लोग हैं, और वो क्या करें फिर, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज बाकी रह जाता है। और हदीस में कर्ज देने का बड़ा हमें सवाब भी पता चलता है, कल भी आपने पढ़ा था, लेकिन यानी इससे ये पता चलता है कि कर्ज लेना देना एक अहम नागुजीर जरूरत है। लेकिन अगर इसमें बेहतियाती की जाए या तसाहुल किया जाए, यानी इसको लेते देते वक्त लिखा ना जाए, बकायदा इसका एग्रीमेंट ना तैयार किया जाए, तो क्या है कि ये बेहतियाती या तसाहुल झगड़ों का बायस बन जाता है। इसलिए जो है इस आयत में, जिसे आयते दैन कहते हैं, जो कुरान की सबसे लंबी आयत है, अल्लाह ताला ने कर्ज के सिलसिले में जरूरी हदायात दी। क्यों जरूरी दी? ताकि ये नागुजीर जरूरत लड़ाई झगड़े का बायस ना बने। जरूरत तो पूरी करनी है, लेकिन ये नहीं कि झगड़ों की फिर एक सिलसिला शुरू हो जाए, लड़ाइयां शुरू हो जाएं, बहन भाई आपस में ना मिले, रूठ जाएं, और अक्सर ऐसा जो है वो नजर आता है कि इस वजह से फिर आपस में बोलचाल बंद हो जाती है और एक दूसरे के लोग जानी दुश्मन हो जाते हैं। तो कर्ज तो क्यों दिया जाता है? ताकि मदद की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं, फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। आइए देखते हैं कि एक आयत के अंदर हमें क्या अहकाम मिलते हैं। तो सबसे पहली बात जो पता चल रही है वो क्या है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम कर्ज का लेन देन आपस में करो, तो और वो एक खास मुद्दत के लिए हो, तो क्या करो, उसको लिख लिया करो। तो पहली चीज क्या है कि कर्ज लेन देन एक खास मुद्दत के लिए है, तो उसकी तहरीर लिख लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, वल यक तो बैनकुम कातिबुम बिल अदल, के फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स जो है ना वो तहरीर लिखे, दस्तावेज लिखे। अब क्या है कि दोनों पार्टियां हैं मौजूद, एक कर्ज ले रही है और एक कर्ज दे रही है, तो अब इसमें क्या होना चाहिए कि इंसाफ के साथ तहरीर लिखी जाए, इसके अंदर कोई भी जो है वो दगाबाजी ना हो, धोखा ना हो। और लिखेगा कौन? कातिबुन, यानी जिसको लिखना जो है वो आता है, तो उसको सलीके के साथ जो है वो लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको? वला या बा कातिबुन यक्तुबा कमा अल्लामहुल्लाहु फलयक्तुब, जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, है ना। अमली जिंदगी में जैसे अगर आप में से किसी को लिखना आता है, या जैसे बकायदा अब ये तो जो है वो सही अंदाज में तहरीर लिखी जाती है स्टाम्प पेपर पर, और फिर उस पर स्टैंप लगती है और बकायदा गवाहों के साइन वगैरह सब, तो फिर उसको उसी तरह से जो है ना मुकम्मल कर लेना चाहिए। और इससे ये भी पता चलता है कि अगर किसी को लिखना आता है, पढ़ना आता है, कोई भी उसके अंदर किसी ने अल्लाह ने सलाहियत अल्लाह ने किसी को ऐसी दी है, तो उसको दूसरे की मदद करना चाहिए, खामखा इनकार नहीं करना चाहिए। अगली बात हमें क्या पता चलती है, वल युम्ल लिल्लज़ी अलैहिल हकू वल यत्तकिल्लाह रब्बहू वला यबख़स मिन्हु शैया, वो लिखे और इमला वो शख्स करवाए जिस पर हक आता है, और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कमी बेशी ना करे। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात बताते हैं दस्तावेजात लिखते वक्त लिखवाने की जरूरत या लिखवाने की जिम्मेदारी जो है ना वो कर्ज लेने वाले की होगी। वो इतराफ करेगा, वो एडमिट करेगा कि मैं फला बिन फला का इतने रुपए का कर्जदार हूं, लिखा जाएगा। और आप देखें कि खास तौर पर बड़ी वाजे क्लियर लिखना चाहिए, किस तरह के वला यबखज मिनहु शैया, उसमें कुछ भी कमी ना हो। आप चेक पर कैसे लिखते हैं, लाखों का भी चेक आप लिखें ओनली लिखते हैं आगे, वो क्यों करते हैं ओनली, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, है ना। तो ये एक तरीका है कि कोई उसमें कमी बेशी जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर अगली बात जो है हमें क्या पता चलती है, फइन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़ सफीहन औ दईफन, अगर वो शख्स जो के कर्ज ले रहा है या तो वो कम अकल है या वो जईफ है, औला यस्ततीउ अन युमिल्ला, और उसके अंदर या ये सलाहियत नहीं है कि वो लिखने लिखाने की सलाहियत रखता हो, यानी उसको पढ़ा लिखा नहीं है या इतनी समझ ही नहीं है, तो फिर क्या हो, फिर उसका जो वली हो फल युम लिल वली हो बिल अद, तो उसका वकील जो है, उसका वली जो है वो फिर ये काम करवाएगा जो उसका कायम मकाम है, और उसको सच्चाई के साथ करना चाहिए। अदल, अदल की शर्त है यहां पर, तो इंसाफ और सच्चाई के साथ दस्तावेजात लिखवाई जानी चाहिए। समझ आ गया यहां तक। फिर आगे फरमाया, वस्तशहीदू शहीदान मिन रिजालिकुम, फिर अपने मर्दों में से दो आदमियों की इस पर गवाही ले लो, यानी मुसलमान मर्दों में से। मिन रिजालिकुम से क्या पता चलता है कि दो मुसलमानों में से, तो यानी उनके अपने मर्द हों। फैलम यकूना ने, यहाँ पे नून गिर चुका है, फैलम यकूना, पस अगर ना हो रजोलई ने, अगर दो आदमी नहीं मिल रहे। बाज़ ऐसा होता है ना कि क्योंकि अपने में से लेने हैं और इंसान ये भी चाहता है कि उस पर एतमाद हो, आगे तर्दौना की शर्त भी है, जिससे तुम पसंद करते हो उसके इखलाक से, उसकी इमानत से, उसकी गवाही से। अब दो नहीं मिलते, एक ही मिल रहा है, फरजुलून, तो एक को आदमी लिया जा सकता है, वमरात आने, और दो औरतें ली जा सकती हैं। मिम्मन तर्दौना मिन शोहदाई, तो गवाहों में से जिसको तुम पसंद करते हो। अंत दिल्ला एहदाहुमा, अगर एक भूल जाए दोनों में से, फतु जकीरा एहदाहुमल उखरा, तो दोनों में से जो एक है वो दूसरी को याद दहानी करवा दे, तो दूसरी उसे याद दिला दे। तो अब आप देखें कि अब बात हो रही है कि जो गवाह हैं तो इनका मामला जो है वो क्या होना चाहिए। इस सिलसिले में ये बात तो लोगों को समझ में आती है कि दो मर्द गवाह बनाए जा सकते हैं, और लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, और औरतें इस पर बहुत नाराज होती हैं, बाज औरतें, कि ऐसा क्यों है कि दो मर्द तो ठीक हैं, लेकिन अगर एक मर्द मिला है तो फिर एक मर्द की बजाय दो औरतों की गवाही, यानी दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर क्यों है। और जब इस्लाम आया और जब सहाबा और सहाबियात ने इसको पढ़ा, समझा, अमल किया, उस वक्त कभी किसी ने शोर नहीं किया, यानी इतने जमाने, इतने साल गुजरने पर किसी ने शोर ना किया, ना नारे लगाए, ना जुलूस निकाले, ना बैनर उठाए कि इस्लाम हमें हकूक नहीं देता। आज के दौर की औरत, जो अफसोस ये कि मुसलमान भी कहलाती है और जदीद तबका है, मुसलमानों में से ही बाज औरतें जो हैं वो इस पर नाराज होती हैं कि इस्लाम जो है उसने दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर जो है वो क्यों रखी है। और अहले मगरिब ने जब से मुसावाते मर्दो जन का नारा लगाया है, और जमहूरी निजाम में औरत को हर मामले में मर्द के बराबर हुकूक देने का फैसला किया है, तो उस वक्त से खास तौर पर ऐसी आयात जो हैं उनको मजाक का निशाना बनाया जाता है और औरत को इस्तेमाल किया जाता है कि दो औरतों की गवाही को एक मर्द के बराबर रखकर इस्लाम ने औरतों की हकूक तलफी की है, यानी हकूक में कमी की है। तो अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने दो औरतों की गवाही जो है वो एक मर्द के बराबर क्यों ठहराई है। अब आप देखें कि पहली बात जो है यहाँ पे रिजाल का लफ्ज है, रिजाल मजबूत कवी मर्द है ना, और मर्द और औरत दोनों जिस्मानी साख के एतबार से बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। अल्लाह ताला ने जिससे जो काम लेना था उसके मुताबिक उसके जिस्म की साख बनाई। मर्द ने जो है वो बाहर जाना था, जॉब करनी थी, कमाई करनी थी, सड़कों को कूटना था और ट्रकों को खींचना था, अदालतों में जाना था, बाहर का काम मर्दों का। तो मर्द मजबूत, और आप इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, और जदीद रिसर्च से भी ये बात सामने आती है कि अज़ा के एतबार से, मसल्स के एतबार से मर्द औरत से मजबूत होता है। ज्यादातर मर्दों की हाइट औरतों से ज्यादा होती है, और जिस्मानी खसूसियात के अलावा नफ्सियाती तौर पर भी मर्द मजबूत होता है। जज्बाती तौर पर भी मर्द के जज्बात स्ट्रांग होते हैं। मर्द जो भी हालात का तल्लवन होता है या हालात की तब्दीली होती है ना, उसका जल्दी शिकार नहीं होता। और डिप्रेशन में भी जो सुनते हैं, ज्यादातर औरतों को जो है ना वो ज्यादा सामने आता है कि वो ज्यादा मायूसी और परेशानी का शिकार होती हैं। तो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि मर्द ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि औरतें जो हैं उन पर उनकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे जरूर आते हैं कि जिससे जिसमें सेहत की बजाय वो बीमारी के ज्यादा करीब होती हैं, जिसमें प्रेगनेंसी है, या जैसे जो ही वो बलूगत की तरफ बच्चियां जाती हैं तो मेंसेस आते हैं, है ना। तो तबीयत के अंदर एक उतार चढ़ाव आता है और झुंझलाहट है और तबीयत एक अच्छी महसूस नहीं होती। इसी तरह प्रेगनेंसी है, निफास है, और प्रेगनेंसी का लंबा अरसा है। और साइंस अमेरिका में और बर्तानिया में और मुख्तलिफ यहाँ पे की रिसर्च से जो बात सामने आती है, हैज और प्रेगनेंसी के दौरान औरत जो है वो उसके अज़ा मुतासिर होते हैं, बाज़ औक़ात उसके दिमाग के कुछ सेल सुकड़ जाते हैं और वो मुख्तलिफ जो है ना वो परेशानी और तकलीफों से गुजरती है। और कुरान तो खुद कहता है कि ज़ोफ़ पे ज़ोफ़ उठाकर, है ना। तो अब गवाही एक बड़ी अहम चीज है, तो अगर औरत जो है उसकी अंदरून में होने वाली तब्दीलियां उसको मुतासिर कर रही हैं तो फितरी बात है कि वो भूल भी जाती है। और वैसे भी आप देखें कि औरतें ज्यादा भूलती हैं, है ना, औरतें जो हैं वो ज्यादा भूलती हैं। और फिर इसमें आप ये बात भी देखें कि अल्लाह ताला जो बात कहते हैं वो क्या है कि दो मर्द हैं तो ठीक है, नहीं दो मिल रहे तो एक मर्द और दो औरतों की गवाही। तो अल्लाह के इस इन फैसलों पर हम राजी क्यों ना हो, क्योंकि ये मामला माली मामलात से है और माली मामलात में गवाही जाके देनी है कोर्ट में, अदालत में। गवाही तभी जरूरत विटनेस की पड़ेगी ना, कोई झगड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, औरत भी अगर विटनेस है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर वो प्रेगनेंसी के साथ है, अगर वो डिलीवरी के करीब है, अगर वो मेंसिस से है, निफास से है, बच्चा छोटा है, अब वो उसको कोर्ट में खींचा जाए तो इन्हें जरूरत नहीं है कि औरत को लिया जाए, मर्द ही ये काम करे तो अच्छा है। और कितनी औरतें हैं जो हमें से जाती हैं कचहरियों में जाकर गवाहियां देती हैं, और अगर कोई मिल ही नहीं ना, मुश्किल हो रही है, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि दो औरतों को ले लिया जाए। और इसमें खास बात यह है कि ये कहकर कि एक की बजाय दो औरतें हों तो इसमें औरत के हकूक में कमी नहीं की, इसने तो औरत के लिए ये इज्जत और शर्फ की बात है कि सहूलत पैदा कर दी, ये उसकी इज्जत और शर्फ है। और हमारी तो आदत भी है ना कि मैं अकेली क्या चलूंगी, तुम भी चलो, कहीं भी जाना होता है एक औरत कहती है दूसरी को आप तुम भी चलते हैं, अब डॉक्टर के पास जाना है, चीज खरीदनी है, बात करनी है, वो हमसाये ने आए हैं, चलो तुम हो आई हो लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चलो ना, फलां बीमार है, आप तो आदत कर ली है आपने हमसाने, मेरे साथ आप चले ना बाजी, आप चले मिलकर चलते हैं, है ना, वैसे बात करते हैं ना। तो औरतों की मतलब औरतें इसमें सहूलत महसूस करती हैं, उनको अच्छा लगता है। तो अब इसको उल्टे माने क्यों लिया जाए, और अगर ये कहा जाता कि औरतें भी गवाही दें तो फिर औरतों को हर हाल में खींचा जाता, अदालतों में भी खींचा जाता, तो आप सोचें कि फिर औरत के लिए चीज कितनी मुश्किल हो जाती है ना। फिर दूसरी बात जो है जो बहुत आम है, इसको आप समझें कि ये निसाब जो है ना गवाही का निसाब समझ आती है बात की, सिलेबस, जैसे ये कोर्स जो है वो गवाही का, ये तो माली मामलात के लिए है, जिना और कजफ जिना होता है उसके लिए चार मर्दों की गवाही जरूरी है, उसमें औरतों का जिक्र भी नहीं है, ठीक है। और यानी औरत इतनी ऐसे हालात हैं ही नहीं कि औरत इस तरह किसी को देख रही है, कहीं गई भी है ना, हया है औरत के अंदर। तो फिर कजफ किसी पर जो इल्जाम लगाया जाता है तो उसके लिए चार मर्दों की गवाही जरूरी है। चोरी, निकाह और तलाक के लिए दो मर्दों ही की गवाही होगी। चोरी है, तलाक है और निकाह है, कोई भी, जैसे निकाह पे कितने गवाह होते हैं, दो होते हैं ना। अच्छा, इसी तरह दिवालिया हो गया है, अफलास, तो इसके लिए इस कबीले के तीन मर्दों की गवाही होगी, ये जो इस्लाम का मुकर्रर करदा निसाब है। दिवालिया आपको पता है क्या होता है, बैंकरप्टसी, उसके लिए उसके कबीले के तीन मर्दों की गवाही है। फिर चांद देखना, रुएते हलाल, यानी चांद का देखना जो नजर आता है, उसके लिए सिर्फ एक मुसलमान की, उसमें ये नहीं है कि जरूर मर्द हो, एक मुसलमान की गवाही, वो मुसलमान होना चाहिए, है ना। तो अब आप देख ले कि चांद देखना तो आप घर बैठकर आराम से देख सकते हैं, तो एक मुसलमान की गवाही, अब इसमें नहीं कहा कि जरूर मर्द की हो, समझ आएगी बात की। इसी तरह दूध की बात है कि दूध के सबूत के लिए कि इसने दूध पिलाया है और इतनी देर पिलाया है ना, आपने रिजात के मामला पीछे पड़े, उसके लिए सिर्फ एक मुतलका औरत की, अब मर्द का कोई इसमें मामला नहीं है। अब मर्द को अल्लाह ताला लाए ही नहीं बीच में, इस्लाम ने कहा ही नहीं, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता ही नहीं चलता। तो रिजात के सबूत के लिए सिर्फ एक मुतलका औरत जो है, यानी दाया जो है, दाई जो है, उसकी गवाही काफी है। समझ आ गई इस बात की। तो अब आप बताएं, यहां तो मर्द नाराज होते हैं कि हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, है ना। तो औरतें ही जो हैं वो ऐसी फजूल बातों पर जो है वो नाराज होती हैं, और औरतें तो इतनी नाराज होती हैं कि बैनर लिखवा कर, और फिर ये भी कहती हैं कि जब गवाही आती है तो नमाजें भी 2.5 होनी चाहिए दिन में, फिर ये भी कहती हैं रोजे 15 होने चाहिए, हज आधा होना चाहिए। तो अब आप देख लें कि जो लोग इस्लाम से बेजार हैं तो इस तरह इस्लाम के निजाम में इबादात पर या अकायद पर जो है वो जर्ब लगाते हैं। और फिर हमारी अगर मुसलमान औरतें ऐसे कहती हैं तो सादा लोग हैं कि वो मगरिब के प्रोपेगंडे से मुतासिर होती हैं और फिर इस्लाम की जड़ों को अपने ही हाथों से जो है ना उस पर कुल्हाड़ी मारती हैं। तो असल बात यह है कि बात हकूक व फराइज की बहस की नहीं है, ये हकूक व फराइज की बहस की नहीं है, ये तो जिम्मेदारी की बात है, ये तो एक जिम्मेदारी की बात है कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसे याद दिला दे। इसमें ना तो औरत की हक तलफी होती है ना उसकी हकारत होती है, बात सिर्फ निस्यान की है कि औरत भूल जाती है। तो अगर कोई तहरीर में कमी रह गई है तो अब क्या है कि वो भूल जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मर्द भी तो भूल सकता है ना, औरत ही क्यों भूले। तो इस हिस्से में जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि यानी अल्लाह ताला हमारी खूबियों और खामियों से खूब वाकिफ है और उनको खूब अच्छी तरह पता है कि हैज, निफास, हमल, वजह हमल के दौरान हम पर ऐसे हालात आते हैं कि दिमागी तवाजुन बरकरार नहीं रहता। तो इसीलिए जो है यानी साइंस भी और तहकीक भी इसकी तायीद करती है कि मर्द ना सिर्फ जिस्मानी लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से, आसाब के लिहाज से जो है वो ज्यादा मजबूत होता है, तो औरत के ऊपर ये नाजुक जिम्मेदारी जो है वो नहीं डालनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं कि फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फरजुलुम वमरातानि मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदाई अन तदिल्ला एहदहुमा फतुज़क्किरा एहदहुमल उखरा। कि अगर दो मर्द, यानी दो मर्दों की गवाही तो लेनी है, अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें हों ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये है इसका मकसद कि निस्यान की सूरत में वो उसको याद दिला दे। तो ये बात बहुत अहम है कि ये अल्लाह ताला ने औरत के लिए सहूलत दी है। औरत की अपनी मसरूफियत, घर के काम भी ऐसे होते हैं ना कि मुश्किल हो जाती है। वला या बशुहदाऊ इजामा दुऊ, और गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए। जब उनको बुलाया जा रहा है, अब वो एग्रीमेंट में शामिल हैं, अब उनको गवाही के लिए कहा जा रहा है कि आओ, मौका आ गया ऐसा कि भूल रहे हैं आपस में, दोनों फरीकैन जो हैं, दोनों ग्रुप जो है आपस में उनके कुछ झगड़ा हो गया, तो अब उनको उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये एक मुआशरती खिदमत है, उनको आकर गवाही देनी चाहिए। और ये जो है ना शोहदा लन्नास, ये उम्मत के फरीजे में से है कि गवाही दी जाए। और गवाही जब देनी है तो कैसी देनी है कि सच देनी है, ठीक देनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई और जब लोगों की तरफ रुख फेरा तो बैठे रहने की बजाय आप सीधे खड़े हो गए और 3 बार फरमाया, झूठी गवाही देना और शिर्क करना दोनों बराबर के गुनाह हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज तने तने बुर्रिजसा मिनल औसानी वज तने बु कौल जूरी। और पहली बात क्या कही कि तुम नापाकी यानी बुतों से दूर रहो और झूठी बात कहने से दूर रहो। हुनफा अलिल्लाह, अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ। गैरा मुशरिकीन भी, शिर्क को छोड़कर तौहीद इख्तियार कर लो। तो अब झूठ तो वैसे कभी भी नहीं बोलना चाहिए, और खास तौर पर जब अदालत में जा रहे हैं, विटनेस का वक्त है और जिंदगी के बड़े अहम मामला तय हो रहे हैं, तो उस वक्त जो है उस वक्त भी नहीं बोलना चाहिए। तो अब तो बेशक जैसे निकाह तलाक के मामलात में भी गवाहियों की जरूरत पड़ती है लेन देन के मामले में, लेकिन अब ये फन बन गया है, पैसे लोग लेकर बिक जाते हैं, तो ये गुनाह कबीरा है झूठी गवाही देना। तो खाला जान 500 तो कुछ भी नहीं है, कह रही है 500 लेते हैं, 500 की बात नहीं है, लोग तो हजारों लेते हैं। इस ये गवाही जो है ना, ये वोट देना भी विटनेस है, गवाही है कि किसको आप वोट दे रहे हैं। तो बस्तियों की बस्तियां बिक जाती हैं वोटिंग के जमाने में, शहरों के शहर बिक जाते हैं। तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम्हें गवाही देने से इनकार नहीं करना चाहिए। और बाद में वोट देते ही नहीं जाकर, भले से कोई भी आ जाए, और जब वो ऐसा आ जाता है जो जालिम है, राशि है, जानी है, झूठा है, कातिल है, तो फिर बैठ कर भुगतते रहते हैं। कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है, सानू की जरूरत ऐसी जाइए, सानू ने हमारे लिए उसने क्या करना है या क्या करेगा या हमें क्या देगा। तो उस वक्त तो ये कहते हैं, और जब वो जो भी फिर जब नेक लोग और बाद जो नमाज पढ़ने वाले नेक लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है जाके वोट देना, हमारा काम है नमाज पढ़ना, तस्बीह के दाने गिराना, अल्लाह अल्लाह करना, ये तो दुनियादार लोगों का काम है जब वोट दें। तो जब वो वोटिंग हो जाती है और जो आदमी बाहर बनकर आ जाता है, वो अच्छा नहीं होता किरदार का, जालिम होता है, तो फिर ये नमाजी जो होते हैं ना, जो सिर्फ नमाज रोजे तक ही अपने दीन को महदूद कर देते हैं, तो क्या है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, फिर चंगेज खान पैदा होते हैं, फिर बस्तियों की बस्तियों को तबाह किया जाता है, फिर हकूक वालों को उनके हक नहीं मिलते, फिर जुल्म होता है ना। तो ये जिम्मेदारी है कि गवाही दी जाए, खा वो वोट की जिम्मेदारी हो या वो अदालत की जिम्मेदारी हो या घर के अंदर कोई झगड़ा हो जाए तो सही बात करना खानदान के अंदर, है ना। तो बाज़ोकात लोग लड़की वाले लड़की की साइड लेते हैं, लड़के वाले लड़की की लेते हैं, लड़के की लेते हैं, अपना जो होता है ना उसकी साइड लोग लेते हैं, अपनी जात की, अपनी बरादरी की, अपने इलाके की। तो ये चीजें सही नहीं है, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वला तसअमु, और ना ही तसाहल करो, अंतकतबूहू कि तुम उसको लिख लो, सगीरन और कबीरन, छोटा मामला हो या के बड़ा, इला अजली इसकी मुकर्रम मुद्दत तक, तो लिख जरूर लिया करो। आप में से कभी ऐसा हुआ किसी के साथ के, या आपने कभी अपने खानदान में ऐसा देखा हो कि कर्ज दिया और लिखा नहीं और उसके बाद फिर झगड़ा हुआ? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। अब देख लें आपकी एक क्लास के अंदर ही 10-15 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, है ना। तो बहुत से ऐसे वाकयात जो है वो पेश आते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मामला छोटा हो या बड़ा उसको लिख लिया करो। और इसका फायदा क्या है, ज़ालिकुम अक्सतु इंदल्लाही, ये इंसाफ के ज्यादा करीब तरीन है, इंसाफ पर मबनी चीज है। वह अकवमु लिश्शहादती, और शहादत कायम होने के की इसमें ज्यादा सहूलत होती है, भूलता नहीं इंसान। वह अदना अल्लाह तरताबू, और इसका भी ये फायदा है कि शक नहीं पड़ता, यानी शकूक और शुबहात में मुब्तला हो जाने के इम्कानात बहुत कम रह जाते हैं। विटनेस से लिखी हुई चीज मौजूद है, तो तीन चीजें हैं यहाँ पे अगर आप गौर करें, और तीनों इसम तफजील हैं, अक्सतु अकवामु अदना, अदना का वजन आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा लेकिन है ये इसम तफजील, समझ आ गई बात की। तो ये फायदा होगा إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ہاں جو تجارتی لین دین تم ہاتھوں ہاتھ کرتے ہو آپس میں دست بدست آپس میں کرتے ہو اگر اس کو نہیں بھی لکھتے تو کوئی حرج کی جو ہے وہ بات نہیں ہے. جیسے جو ہے وہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ تھا نا کیش میمو کا طریقہ, یا بعض اوقات آج بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جا کے دکان سے چیز لیتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں کہ اتنی ہے نا, تحریر لکھی جاتی ہے. اور اب جو ہے کہ ایک ہاتھ سے دیے دوسرے ہاتھ سے آپ نے چیز لے لی تو اب اس میں جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں تاکہ لین دین کے معاملات میں بھی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مشکل نہ ہو. تو چھوٹی موٹی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں یہ سہولت پیدا کر دی کہ اگر نہیں بھی لکھتے تو پھر کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. اب آپ دیکھ لیں کہ بڑے پیمانے پر اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو کہ گواہ کر لو. تو گواہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب گواہ ہوں گے اور دوسرا بندہ انکار کرے گا تو پھر کیا ہے کہ وٹنس موجود ہوگی ہے نا, تو پھر وٹنس کی صورت میں معاملہ جو ہے وہ آسانی سے اور اچھے سے جو ہے وہ حل ہو جائے گا. پھر فرمایا ولا یدار کاتب ولا شہید, کہ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے کہ ان کو جو ہے تنگ نہ کیا جائے تاکہ جب وہ گواہی دے چکے ہیں اور وہ تحریر لکھ چکے ہیں تو اب ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو جو ہے نا وہ ستانا شروع کر دیں. اس کی کیا ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں کہ دو فریق عین ہیں اور ایک فریق کے اوپر گواہی پڑنے والی ہے, اس کے خلاف پڑنے والی ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ بےچارے گواہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ ہم یا تو گواہی نہ دیں یا پھر غلط گواہی دیں, ہے نا. اور نقصان جو ہے وہ کیا پہنچایا جاتا ہے کہ ان کو بلایا تو جائے, اب جس کے لیے وہ گواہی دینے جا رہے ہیں نا وہ ان کی حفاظت کا انتظام نہ کریں, ان کو عدالت تک جانے کا خرچہ نہ دیں, پیسہ نہ دیں جو اس کی ضرورت ہے. تو یہ آمد و رفت ہے یا کھانے پینے کا خرچہ ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ضروری ہے. اور اکثر آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کورٹ میں ہی کورٹ کے باہر ہی آتے جاتے دوسرے جو گروپ تھا اس نے فائرنگ کی اور مار دیا. اور جب گواہ مٹ جاتے ہیں نا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو کیس ہے نا فائلیں لپیٹ دی جاتی ہیں, پہلے ہی وہ کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ معاملات اینڈ تک جو ہے وہ نہ پہنچے. تو قیامت جب ہوگی تب جو ہے ہر ایک کا پورا پورا حساب جو ہے وہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ اس کو چکانا ہوگا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ, اور اگر تم ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے جو ہے وہ ستایا کاتب کو یا گواہ کو تو فائدہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ نیک لوگ گواہی نہیں دیں گے, اچھی گواہیاں نہیں ہوں گی ہے نا, ٹھیک طرح سے لوگ پھر لکھیں گے نہیں. اب کیا ہوگا کہ پیشہ ور گواہ, پیسے والے گواہ, یعنی پیسے دیے اور گواہی لے لی تو یہ عام ہو جائیں گے. تو اس کا جو نقصان ہوگا تو اس میں پھر تم سب ذمہ دار ہوگے, اغوا ہے, نقصان مال و جائیداد ہے, قتل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ بات مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا سکھایا ہے کہ تم سچی بات کہو. تم تو ہو ہی امت وسط, آپ نے جو ہے وہ جب پڑھا تھا کہ امامت تبدیل ہوئی, خانہ کعبہ کی تبدیلی ہوئی, تو ساتھ ہی دوسرے پارے کے آغاز میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا. اور امت وسط کا کام کیا ہے کہ جو گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تم نے لوگوں کو پر نیکیوں کو قائم کرنا ہے اور لوگوں کو بدی سے روکنا ہے, تو اس کے لیے تم یہ کام جو ہے وہ کرتے رہنا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, آیت 143 سورۃ البقرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ इसलिए तो तुम्हें जो है वो हमने एक उम्मते वस बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो, रसूल तुम पर गवाह हो, है ना। तो अब ये नहीं हो सकता कि तुम जो है वो गवाही जो है वो उसको छुपा लो और तुम गवाही जो है वो ना करो, या गवाही के सिलसिले में जो भी मामलात हैं उसमें तुम्हारे अंदर जो है वो कमी बेशी आनी शुरू हो जाए। तो फिर तुम जो है वो सोचो कि अगर अल्लाह पकड़ेगा तो तुम्हारा जो है वो मामला कैसा मामला होगा, है ना। और हमें कुरान मजीद में जगह जगह ये बात जो है वो मिलती है कि गवाहियां देनी चाहिए, नेकी का हुक्म देना चाहिए, नेकी का काम करना चाहिए और लोगों को बदी से मना करना चाहिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी जो है ना वो यही काम करते रहे। और इस सिलसिले में आप ये बात भी याद रखें कि एक दफा जो है वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिरह गुम हो गई थी। जिरह किसे कहते हैं? जंगी औजार में से है और जंगी लिबास के, लोहे का लिबास। तो अब ये कि गुम हो गई तो वो किसी यहूदी ने उठा ली, और आपको पता चल गया कि फलां के पास है और पहचान ली तो उससे मांगी, तो उसने कहा कि नहीं मुझे क्या पता कि ये तुम्हारी है। हजरत अली रजी अल्लाह ने अदालत में मुकदमा किया, अमीर मोमिनीन थे। तो जब मुकदमा हुआ यहूदी को भी बुलाया गया और इनको भी बुलाया गया, तो जो जज था उसने कहा कि आप जो है ना गवाह पेश करें। इन्होंने एक तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह को पेश किया और दूसरा कंबर, कंबर इनका गुलाम था। तो जज ने ये कहकर कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जा सकती, हजरत हसन रजी अल्लाह की गवाही जो थी उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। और जो गुलाम था कंबर, ये कहकर के गुलाम की गवाही अपने आका के हक में कबूल नहीं की जा सकती, आपने दोनों गवाहियां जज ने रिजेक्ट कर दी। और वक्त का अमीरुल मोमिनीन बगैर जिरा के अदालत से बाहर आया और जो जिरा थी ना वो यहूदी के सपुर्द कर दी। यहूदी इतना मुतासिर हुआ इस बात से कि मतलब ये इस्लाम की इन उसूलों से और इन जो ये इसने अपनी आंखों से देखा था कि जो बादशाह है वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, इसको भी जिरा जो है वो नहीं मिल सकी ना। तो वो इतना मुतासिर हुआ और उसको पता चल चुका था कि ये इन्हीं की है कि उसने बाहर आकर जिरा खुद हजरत अली रजी अल्लाह के सपोर्ट कर दी। तो ये है कि सच्ची गवाहियां और इस तरह के बहुत से वाकयात जो हैं वो हमें मिलते हैं कि इसमें एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह नो का भी मामला पता चलता है ना। जैसे यहाँ पे भी अक्सतु की बात है और अदल की बात है, गवाही की बात है कि उन्होंने एक दफा किसी बद्दू से कहा कि तुमसे घोड़ा लेना चाहता हूँ। जब घोड़ा जो है वो उसके ऊपर बैठे और थोड़ा सा गए ना, जैसे चेक करते हैं घोड़े पर बैठ के, तो वो घोड़ा जो था ना वो गिरा, उसने ठोकर खाई। जब आप सवारी कर रहे थे, आप उसको चेक कर रहे थे कि वो थोड़ा सा लंगड़ाने लगा, उसके पास वापस आए और कहने लगे मैंने घोड़ा नहीं लेना। उसने कहा कि या तो घोड़ा लीजिए या मुझे वैसे ही दीजिए जैसे मैंने आपको दिया था। बद्दू कहने लगा मैंने ऐसे घोड़ा वापस नहीं लेना। काजी शुरह जो थे उसकी अदालत में मुकदमा गया। तो और अमीर मोमिनीन रजी अल्लाह ने कहा था, तो उमर रजी ने कहा कि मैंने तो घोड़ा देखने के लिए लिया था और इस तरह से उसको वो गिरा ठोकर लगी, तो मेरा इसमें क्या कसूर है, मेरा सौदा तो नहीं अभी हुआ था। उस आदमी ने कहा कि लेकिन जब इसने मेरे से लिया था तो कैसा था? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो था वो तब तो बिल्कुल ठीक हालत में था हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा। तो जो काजी शुरह हैं इन्होंने कहा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने से कि अमीरुल मोमिनीन आपके लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये कि आप घोड़ा आप खरीद लीजिए, इसलिए कि जब आपने लिया था तब तो वो ठीक हालत में था, आपकी सपुर्दगी में वो लंगड़ाने लगा, खराब हुआ, और या फिर यह कि घोड़े को बिल्कुल वैसा ही वापस करे जैसे लेते वक्त था। अब हजरत उमर रजी अल्लाह के लिए और कोई चारा नहीं था ना। और आप अपने इस आदमी के फैसले से इतना खुश हुए कि उसको जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसका जज मुकरर कर दिया, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के लिए उसको चुन लिया। नाराज नहीं हुए? हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसी को उतार देते हैं, है ना। पाकिस्तान के आजकल यही हालात है ना कि उसको ही उतार दिया। और यानी हमारे यहाँ तो सुप्रीम यानी सबसे बड़ी जो मुल्क की अदालत है उसमें भी क्या होता है कि वो भी गवर्नमेंट के अंडर वो चाहते हैं कि फैसले हों। लेकिन उस जमाने में क्या था, वहां पे अमीरुल मोमिनीन और खुल्फाए राशिदीन के जमाने में क्या था कि वो भी अदालत में आकर ना आम तरह से बैठते थे। एक दफा एक अमीरुल मोमिनीन आए ना, तो जैसे उनके लिए स्पेशल जो कुर्सी आई या वो चाह रहे थे, तो कहा कि नहीं, अब आप दोनों बराबर हैं जब तक कि मुजरिम का जुर्म साबित ना हो जाए, आपको कुर्सी नहीं दी जा सकती। जज इतना मजबूत होता था। और एक और गवाही आपको पता है जिसकी वजह से एक सहाबी जुश शहादतैन कहलाए, दो गवाहियों वाले। हजरत हजरत बोले जल्दी से, खुजैमा रजी अल्लाह अन्हु, जुश शहादतैन। कि एक दफा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी से सौदा कर रहे थे, बदू से किसी सवारी खरीदने का। तो अभी आपका सौदा हुआ था और आप लेने गए थे घर में कुछ पैसे लाए, तो एक और शख्स ने आकर उसे ज्यादा दिए, तो बद्दू ने उसके हाथ भेज दिया दूसरे आदमी ने ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा तो सौदा हुआ था, तो उसने कहा कि गवाही लाए। तो पास ही से वो गुजर रहे थे ये सहाबी जो थे, तो इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी ने मतलब जो बात कही है सच है, तो आपने उसको जुश शहादत है, दो गवाहियों वाला जो है ना उसका लकब दिया। तो बहरहाल वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जो अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है। तो ये था अल्लाह की तालीम का नतीजा कि लोग जो थे वो गवाहियां कायम भी करते थे और सच्ची गवाहियां भी देते थे और उन गवाहियों को तस्लीम भी करते थे, और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी के धारे जो थे ना, उनकी जिंदगी के जाविये चलते थे और उनके सोचने समझने के अंदाज में वाकई तब्दीली हो गई थी। हमारे यहाँ तो सोसाइटी के अंदर सच और झूठ इतना मिक्स हो चुका है कि बड़े आराम से लोग झूठी कस्में खा लेते हैं, कुरान उठा लेते हैं, बात बात पर कसम खाते हैं। एक दफा कहते हैं ना कि प्यारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बात कर रहे थे, और करते करते आपने कहा कि झूठी गवाही और झूठी गवाही और झूठी गवाही, आप इतनी तकरार से कर रहे थे कि तुम लोग ऐसा ना करो, कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जोश की कैफियत में ये बात कह रहे थे कि सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश के प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए ना, कि लोगों तुम झूठी गवाही देते हो। तो आप सोच लें कि हम सबका जो हाल है, और इसमें बाजू का दो बच्चों में भी लड़ाई हो जाती है ना, तो माँ अपनी साइड बच्चे की लेती है, मेरा लाल मेरा ठंडा मीठा भेजा, वो ये हरकत नहीं कर सकता है ना। तो जिस बात का पता ना हो हमें गवाही नहीं देनी चाहिए, क्या पता बच्चे ने हमारे नहीं गलती कर ली हो। मेरा बच्चा पत्थर नहीं मार सकता, ये शीशा नहीं तोड़ सकता, इस छत से जंप नहीं कर सकता। बाहर बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसी हरकतें कर सकते हैं, तो हमारा ठंडा मीठा बेटा जो है, या हमारा वो हनी और क्या कहते हैं लवली और क्या कहते हैं मून स्वीटी स्वीट, तो ये चांद ये चंदा ये सब कुछ सब ही कर सकते हैं। असल में अल्लाह का डर होना चाहिए है ना, वल्लाहु बिकुल्लि शयइन अलीम, और उसे और अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, क्या किया किसने किया झूठा किया सच्चा किया अल्लाह ताला खूब जानते हैं। और वह इन तुम अला सफर, और अगर हो तुम सफर की हालत में, फलम तजिद तजिदु कातिबन, और तुम्हें जो है वो कातिब ना मिले, लिखने वाले ना, लिखने वाला ही नहीं मिल रहा। सफर में होता है ना, कभी कॉपी नहीं है कभी पेन नहीं है, ऐसा शख्स है जिसको तहरीर लिखनी नहीं आती, फिर क्या करो। फर फरिहान मकबूदा, तो रहन बिल कर्ज पर मामला कर लो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सफर में खास इसका जिक्र इसलिए किया गया है कि इस्लाम जो है वो ये पसंद करता है कि उसके जो मानने वाले हैं वो अपने बहन भाइयों को ऐसे ही कर्ज दे दिया करें, यानी इतना उनका आपस में जो है वो एतमाद होना चाहिए। जब मुसलमान मुसलमान का मामला हो तो इस्लामी अखुवत और मुरव्वत उसका ये तकाजा है कि वो मतलब दे दे। आम हालात में तो कहा ना कि तुम लिखो भी गवाहियां भी सारी बातें, अब सफर में हो तो ये सब चीजें मुयस्सर नहीं है, तो फिर ये है कि तुम जो है एतमाद करके दे दो। तो अब ये है कि अगर ये नहीं मिलता तो क्या करें, कि रहन बिल कब कर लो। तो सफर की हालत में रहन भी किया जा सकता है। रहन के मामले की चार सूरतें हैं, चार शक्लें हैं, वो क्या हैं? मसलन सफर हो या हजर, यानी सफर में है या घर में है, और कातिब ना मिल रहा हो, दो शक्लें तो ये हो गई, क्या? यानी सफर में है और कातिब नहीं मिल रहा, दूसरा ये कि घर में है और कातिब नहीं मिल रहा, ठीक है, दो तो ये शक्लें हो गई। और दो दूसरी क्या है, सफर या हजर दोनों जगह कातिब तो मिल सकता है मगर कर्ज देने वाला महज तहरीर पर एतमाद नहीं करता। सफर में है या घर में है, तहरीर लिखी जा सकती है, कातिब मौजूद है, मगर जो कर्ज दे रहा है ना वो एतमाद ही नहीं करता और अपनी कर्जे की वापसी की जमानत के तौर पर वो कहता है कि रहन का मुतालबा, यानी कोई चीज रहन रखो, और रहन खा तहरीर के साथ हो या तहरीर के बगैर, रहन हुआ ना, समझ आई बात की? कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कड़े दे दिए उतार कर, तो लिखे भी जा सकते हैं कि कड़े दिए और बगैर लिखे भी जो है वो हो सकता है। तो इन सारी शक्लों में जो है वो रहन जायज है। समझ आ गई चारों शक्लें आपको? नंबर वन क्या थी कि सफर में है और कातिब नहीं मिल रहा, नंबर दो हजर में है और कातिब नहीं मिल रहा, नंबर तीन सफर में है कातिब तो मिल रहा है लेकिन ये कि कर्ज देने वाला जो है वो तहरीर पर एतमाद नहीं करता, वो रहन कहता है कि कोई चीज रहन रखवाओ, नंबर चार ये कि हजर में है यानी घर में है और कातिब तो मिल रहा है लेकिन कर्ज देने वाला तहरीर पर एतमाद नहीं करता, वो कहता है कि साथ में कोई चीज रहन के तौर पर जो है वो रखवाओ। अच्छा, इसी तरह रहन के सिलसिले में कुछ मसाइल भी हैं, उसमें से पहली बात क्या है कि जैसे किसी ने कोई चीज जो है, जैसे जिसने कर्ज लिया उसने अपनी कोई चीज दूसरे को बतौर रहन रखवा दी, तो अब उसका जो नफा और नुकसान है ना उस चीज का, वो उसी का है जिसने रखवाई है। मसलन मैं आपको मिसाल देती हूं कि जैसे नासिरा ने आपदा के पास जो है वो रहन के तौर पर गाय जो है वो रखवाई, ठीक है, नासिरा ने आपदा के पास, और गाय जो थी वो आपदा के पास जाके मर गई, तो अब आपदा को गाय नहीं देनी नासिरा को क्योंकि वो नासिरा ही की गाय थी और वो मर गई, उसके पास तो रहन के तौर पर थी ना। इसी तरह से इसका दूसरी बात यह है कि गाय ने वहां जाके बच्चा दे दिया, है ना, अब फायदा हो गया, नुकसान नहीं फायदा है, तो अब भी ये नासिरा का है, आपदा का नहीं है, समझ आई बात की? तो असल बात यह है कि जो शख्स दूसरे के पास अपनी चीज रहन के तौर पर रखवाता है तो नफा और नुकसान दोनों का वो खुद ही मालिक होता है, जिसके पास रखवाई जा रही है ना वो उससे फायदा नहीं उठा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिरवी रखवाना किसी मरहूना चीज को इसके असल मालिक से नहीं रोक सकता, इसका फायदा भी इसी के लिए है और इसका नुकसान भी इसी पर है, ये मिश्कात की रवायत है। तो मरहूना क्या होती है, वो चीज जो कि रहन रखवाई गई है उसको मरहूना कहते हैं, मरहूमा कौन होता है, जो मर जाता है ना, उसी से। तो मरहूना चीज जो है वो मुर्तहन, जिसके पास रहन रखवाई गई है, मुर्तहन छोड़ दें, मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था कि आपको मुश्किल ना हो, तो जिसके पास चीज रखवाई गई है, जिसे कर्ज लिया गया है, तो अब कर्ज लेने वाला वो उसके पास जो अपनी चीज रखवाता है तो उसके पास वो बतौर इमानत के है, वो इससे फायदा नहीं उठा सकता, समझ आ गई बात की? मसलन मकान है तो इसमें रह नहीं सकता, इसको किराए पर नहीं दे सकता, जैसे अब किसी ने रहन के तौर पे मकान गिरवी रखवाया है, अब वो कहे अच्छा चलो हम किराए के घर को छोड़ के एक साल तक तो ये है ना हमारे पास, इसमें हम रह ले, वो ऐसा नहीं कर सकता, या फिर ये कि जमीन है तो उस पर काश नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सूद हो गया कि पैसे दिए हैं जमीन ले ली और उस पर काश करके फायदा उठा रहा, तो ये सूद की शक्ल हो गई, इल्ला ये के ऐसा फायदा कि राहिन खुद उसको कह दे कि आप ये फायदा उठा सकते हैं, हा? और वो क्या है, यानी इस तरह नहीं कि वो सूद की शक्ल बन जाए, वो इस तरह से है मसलन कि मसलन जो कर्ज लेने वाला है उसने रहन के तौर पर गाय रखवाई, अब जब गाय उसने रखी तो अब वो चारा तो डालेगा ना, जिसके पास गाय है, और अगर वो गाय दूध भी दे रही है तो फिर वो दूध पी सकता है चारे के बदले में, कर्ज के बदले में नहीं। समझ आई बात की? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहूना जानवर की पीठ पर सवारी के लिए जो है वो, सवारी के लिए अगर जो है वो सवार हो जाएं, या फिर मरहूना जानवर का दूध पीने के लिए इसके अखराजात के इवज ये जायज है। समझ आई बात की? कि एक जानवर है, उसके उसको चारा खिला रहा है वो आदमी जिसने कर्ज दिया है, तो उसकी पीठ पर भी बैठ जाए तो हर्ज नहीं, इसलिए कि वो उसको चारा खिलाता है, उसका ख्याल रखता है, उसको बांधता है, पानी पिलाता है। इसी तरह अगर वो उसका दूध भी पी ले तो भी इसमें हर्ज नहीं, इसलिए कि वो उसको चारा खिलाता है, उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। तो और जो शख्स सवारी करता या दूध पीता है तो उसी के जिम्मे तो इसका खर्चा है ना। समझ आ गई बात की? तो ये तो ठीक है। तो ये चंद एक मसाइल हैं जिससे हमें ये बात जो है वो पता चलती है कि क्या करना चाहिए कि रहन के मामला कि अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब ना मिले तो रहन बिल कर्ज पर मामला जो है वो कर लिया करो। फइन अमिना बादुकुम बादन फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहू वलियत्तकिल्लाह रब्बा। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके इसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि इमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे। तो अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि जब किसी ने भरोसा किया है, अब उसने ये किस शख्स के बारे में बात हो रही है कि जो कर्ज दे रहा है उसने ट्रस्ट कर लिया, रहन नहीं मांगा। उसने कहा पहले ने तो रहन मांगा ना कि रहन दो, अब दूसरा जो है कहता है ठीक है कर्ज दे देता हूँ, रहन नहीं मांगा, ट्रस्ट करता है ना। तो जिसको कर्ज दिया जा रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? फल यो दिल लजी तो मीना अमानत हूँ, तो उसको इमानत वो अदा कर देनी चाहिए, वो कर्ज जो है उसको बगैर तंग किए जो है वो अदा कर देना चाहिए, क्योंकि उस पर एतमाद किया गया है ना, तो उसको इस इमानत का हक जो है वो अदा करना चाहिए। उसने कर्जा लिया है या कोई भी चीज ली है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके अंदर कोई कमी बेशी जो है वो ना करे, वरना अगर वो कमी बेशी करता है तो फिर वो क्या है, वो अल्लाह के हाँ जो है वो गुनाहगार है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है ना कि एक शख्स ट्रस्ट कर रहा है और फिर उसको जो है वो चीज वापस ना दी जाए या उसका कर्जा अदा ना किया जाए, क्योंकि ऐसे में जो कर्ज लेने वाला है ना उसके पास ये गुंजाइश निकलती है, गवाह भी नहीं है, तहरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कातिब नहीं है, तो वो कुछ भी नुकसान उसको दे। तो अल्लाह ताला उसको ये तवज्जो दिला रहे हैं कि वलयत्तकिल्लाह रब्बा, कि तुम्हें अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए, उसका तकवा इख्तियार करना चाहिए, और जो भी तुमने कर्ज लिया है उस पर उसको अदा कर दो कि तुम्हारे भाई ने तुम पर भरोसा किया है। इसीलिए कहते हैं ना कि ट्रस्ट शेक नहीं करने चाहिए, जब वो एक दफा टूट जाता है ना किसी का किसी पे ट्रस्ट तो फिर वो बनता नहीं है। तो आपस में जब किसी से जो मामला किया जाए कि इतने दिनों के लिए है, इतना है या मेरी मजबूरी है, तो उसको दे कर देना चाहिए था। और बाज लोगों की ना आदत हो जाती है, जहां एक तरफ ये बहुत अहम है कि कर्ज जब जरूरतमंद मांगे तो उसको कर्ज जो है वो देना चाहिए, तो वहां पे ये भी बहुत अहम है कि कर्ज लेने वाला जो है ना वो कर्ज की अदायगी की नीयत भी करे और कर्ज की अदायगी जो है ना उसमें टाल मटोल से काम ना ले। उसको अल्लाह से डरना भी चाहिए और जो शख्स है जिससे उसने लिया है उसको उसे सताना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कर्ज ले लेते हैं और फिर जो है जब देने का वक्त आता है तो कहते हैं कि हमारी ये जरूरत है, ये जरूरत है, घर में अपनी तायुश में अपनी रहन सहन जो है उसके इजाफे में जो है वो लगे लगे रहते हैं। हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौ उमर ऊंट किसी से बतौर कर्ज लिया, फिर आपके पास ज़कात के कुछ ऊंट आए तो आपने मुझे हुक्म दिया कि इस आदमी का नौ नौ उमर ऊंट यानी जवान ऊंट अदा कर दो। तो मैंने कहा इन इन ऊंटों में सिर्फ एक ऊंट है जो बहुत उम्दा है और 7 साल का है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही उसे दे दो, इसलिए कि बेहतरीन आदमी वो है जो बेहतरीन तरीके पर कर्ज अदा करता हो। इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार कर्जदार का कर्जा अदा करने में टाल मटोल करना जुल्म है। अमीर लोग भी तो कर्जा लेते हैं ना। मालदार कर्जदार का कर्जा अदा करने में टाल मटोल करना जुल्म है। और अगर कर्जदार कहे कि तुम अपना कर्जा फलां खुशहाल आदमी से ले लो, तो खाम खा कर्जदार के सर पर सवार ना रहना चाहिए, इसकी ये बात मान ले और जिसका उसने हवाला दिया उससे जाकर ले ले, अगर वो दे दे, है ना। बाजू का बाज लोग भाई का भाई, दोस्त का दोस्त दे देते हैं, वालदेन का माँ औलाद दे देती है, और अगर ना हो तो उसको अदा करने की फिक्र करनी चाहिए। इसी तरह यह हदीस भी बुखारी मुस्लिम की है और अगली भी बुखारी की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का माल बतौर कर्ज ले और वो नियत इसके अदा करने की रखता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से अदा कर देगा, और जिस शख्स ने माल बतौर कर्ज लिया और नियत अदा करने की नहीं रखता तो अल्लाह ताला इस शख्स को उसकी वजह से तबाह बर्बाद कर देगा। असल में अल्लाह ताला अदा कर देगा, अल्लाह इसे सबील पैदा कर देता है, वरना तो नमाज जिनाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाने से इनकार कर दिया ना, जिसने कर्जा लिया हुआ था और अदा नहीं किया था। कितनी बड़ी बात है ना। तो इसकी वजह से ये मामूल है उम्मत मुस्लिमा का कि जब कोई जिनाजा है तो पूछा जाता है उसके वारसों से कि इसके ऊपर किसी का कोई कर्जा तो नहीं है, या फिर कोई कहे कि हाँ हम अदा कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज अदा कर सकने वाले का टाल मटोल करना हलाल कर देता है उसकी आबरू को और उसकी सजा को। तो टाल मटोल जो है उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि उसको जो है वो फौरन कोशिश करे कि इसकी किसी तरह जो है ना अदायगी हो जाए। तो अब आजकल की सोसाइटी को अगर हम देखते हैं तो ये जो सूद की बात है या कर्जे की बात है, तो सूद भी तो कर्जा लेते हैं तो सूद साथ देना पड़ता है। तो अगर अपना तजिया करें, जायजा लें, तो क्या है कि हम सूद जब लेते हैं या देते हैं तो इसकी क्या रीजन है, और इसी तरह जब कर्जे लेते हैं तो इसकी क्या वजूहात है। क्योंकि जरूरियात आम तौर पर दो तरह की होती हैं, एक होती हैं जो कि नागुजीर हैं, खाना पीना कपड़ा पहनना, है ना, और एक दूसरी जरूरत जो होती है वो क्या है कि तायुश स्टेटस, दुनिया की दौड़। और अगर कारपेट बिछाने के लिए हम ले रहे हैं कर्जा और सूद में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अच्छी गाड़ी, अच्छा स्टेटस, एक और हीरे जोहरात का सेट ला देने के लिए, सबका मुकाबला करने के लिए, तो आप सोच लें कि इसकी गुंजाइश हमारे लिए निकलती है, है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है कि उसको कर्ज का अदा कर देना चाहिए और अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए। वला तक तुम शहादा, और तुम गवाही मत छुपाओ, शहादत हरगिज ना छुपाओ। क्यों? क्योंकि जो शख्स भी गवाही जो है वो छुपाता है तो वो अल्लाह के यहाँ जो है वो फिर क्या है, जवाबदेह है। और अभी मैंने आपको बताया ना कि झूठी गवाही, और एक मुस्तनद हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक्या सुनाया था कि किसी ने, जैसे जब वो मक्का से सफर पर गए तो साथ उसके उनके पास ऊंट थे और एक गुलाम भी साथ था। लंबी हदीस का निचोड़ मैं आपको बता रही हूँ। तो रास्ते में ना क्या किया उसने, जो मालिक था उसने कहा कि ये ऊंट खुला हुआ क्यों है। तो नौकर ने कहा कि इसकी रस्सी जो है वो नहीं है या मिल रही, तो उसने रस्सी के ना मिलने पर ना उस गुलाम को मार दिया, मारा इस तरह कि वो मर गया। जब वो मर गया तो वो शख्स जख्मी था और यमन का कोई काफला गुजर रहा था, तो उसने काफले वालों से कहा कि जब तुम हज पे जा रहे हो या उमरे पे जब तुम जा रहे हो तो वहां ऐलान करना और मेरे कबीले का बताना कि तुम्हारे कबीले का जो आदमी था ना, एक ऊंट को बांधने की रस्सी के इवज, यानी वो रस्सी के ना मिलने पर उसको जो है ना मार दिया गया, और इसने मार दिया ना। तो वो गया और उसने जाकर कबीले वहां पे ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम हैं, तो उसने बता दिया कि इसी तरह तुम्हारा जो गुलाम आदमी था ना, वो फलां का गुलाम, उसने उसको मार दिया। अच्छा, तो उधर से वो आदमी भी पहुंच गया अपना बिजनेस तिजारत करके वापस, तो उसके घर वालों ने पूछा कि हमारा आदमी कहां कि वो बीमार हो गया था और मैंने उसकी बड़ी ख्याल रखा और उसको पैसे दिए और उसका इलाज कराया, तो वो मर गया, तो उसको दफन शफन कर दिया, मामला खत्म कर दिया उसने। उधर से वो जो वो हज और उमरे के मौके पे वो काफले वालों ने जो बात बताई ना, और इस पर अब फरीकैन के दरमियान जो था ना ये मामला हुआ कि गवाहियां दी जाएं। अब उसका वो जो आदमी मार दिया गया था, अब क्या करना था कि या तो उसकी वो देनी थी, दियत देनी थी, कसास उसका देना था ना, बदला देना था। तो और बदला उसका क्या तय पाया कि 100 ऊंट, और या फिर ये था कि एक ऊंट के बदले दो लोग आकर गवाही दे दें कि जो है कि भी ऐसा नहीं हुआ, तो उस खानदान के लोग मान जाएंगे। ये जो पंचायत का ये फैसला था, ठीक है, समझ आ रही है बात की। अच्छा, अब उसके खानदान के लोगों में से 50 ऐसे मर्द चाहिए थे जो आकर गवाही दे, 50 तो ही वो 100 ऊंट के बराबर होता ना। अब उसमें क्या हुआ कि 48 लोगों ने आकर ना गवाही दे दी, 48 लोगों ने आकर, झूठी खानदान के लोगों ने गवाही दे दी, और दो लोगों ने गवाही ना दी। उसमें से एक औरत थी जो बेवा थी या मिस्कीन थी, उसने जाकर उस कबीले वालों की मिन्नत कर ली कि मेरा ये एक ही बेटा है और मेरे ये हालात हैं, और दे भी नहीं सकते और गवाही भी नहीं। उसने उसको हटा, बरी करा लिया अपने बच्चे को, और एक किसी और ने कहा कि हमने ये गवाही नहीं देनी। कहते हैं कि कसम खाकर आगे यह हदीस बयान होती है, रसूल ने फरमाया कि साल के अंदर अंदर 48 लोगों में से एक भी ना बचा, 48 के 48 जो थे वो मर गए, झूठी जिन लोगों ने गवाही दी थी। तो ये तो है दुनिया में इसकी सजा। तो यहां पे भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फमन यक्तुमहा फइन्नहू आसिमुन कल्बुहु, और जो शख्स भी जो है वो मतलब छुपाता है गवाही को तो उसका दिल तो गुनाहगार है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है, अल्लाह को खूब पता है कि तुम्हारे अमल जो है वो क्या है। यानी अगर तुम गवाही छुपा रहे हो तो तुम्हारा दिल को तो पता है ना कि ये झूठा है। यानी जबान कितना ही इकरार क्यों ना करे, किसी के लिए झूठी गवाही क्यों ना दे, तो सबसे पहले तो दिल में इरादा आता है ना, और दिल गुनाहगार हो जाता है। तो दिल दिल में इंसान किसी बात को जब जानता है, दिमाग से जानता है, दिल उसका इकरार करता है, तो जबान पर भी बात आती है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गवाही का ताल्लुक दिल से है, और खास तौर पर यहाँ पर जो बात थी कि उसका दिल गुनाहगार है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को खबरदार करते हुए फरमाया, सुन लो, बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है कि जब वो तंदुरुस्त हो तो सारा जिस्म ही तंदुरुस्त है, वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म ही बिगड़ जाता है। याद रखो, वो टुकड़ा इंसान का दिल है। ये बुखारी की रवायत है। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कोई गुनाह का काम करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, फिर अगर इंसान तौबा कर ले तो वो नुकता धुल जाता है, और अगर तौबा ना करे, मजीद गुनाह किए जाए, तो नुकता बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि इसके सारे दिल को घेर लेता है, उसे स्याह कर देता है। और जब दिल पूरा स्याह हो जाता है, अच्छा काम करने पर उसको खुशी नहीं होती और बुरा काम करने पर उसको कोई अफसोस नहीं होता, उनका दिल पूरी तरह मुर्दा हो चुका है। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रवायत किया है। तो गुनाह के सबसे पहले असरात इंसान के दिल पर होते हैं, है ना, और नियत में फितूर होता है, दिल में असरात आते हैं तो इंसान गुनाह करता है ना, फिर आगे जिस्म के अज़ाब की प्लानिंग करते रहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आप अच्छी आयतें पढ़ते हैं तो दिल पर उसके असरात होते हैं, अगर आप यानी अच्छी आयात तो सारी अच्छी हैं, लेकिन ऐसी आयात जो आपके ईमान को बढ़ा देती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी आयात पढ़ते हैं जिसमें इंसान खुद मुलव्वस होता है, जैसे सूद के बारे में ही पढ़ा, और अगर है कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं तो कितना दिल अफसरदा होता है कि क्यों ना। तो दिल असरात कबूल करता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो असल बात क्या है कि आसिमो कल्बो से मुराद क्या है कि ऐसे दिल जो गवाहियों को छुपा लेते हैं, और वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह तुम्हारे अमाल से जो है बाखबर है, उसको खूब पता है कि तुम कैसी गवाही दे रहे हो, झूठी दे रहे हो कि सच्ची दे रहे हो। और तो उसकी पकड़ इंसान की किसके पास होनी है, अल्लाह के पास जाकर होनी है। तो हमें अपनी पूरी जिंदगी के तमाम अमाल की बुनियाद जो है ना वो सच्चाई पर रखनी चाहिए, और कर्जों के लेन देन के वक्त जो है तहरीरें लिख लेनी चाहिए, गवाहियां कायम कर लेनी चाहिए, ताकि लड़ाई झगड़े जो है वो ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता करे, इसलिए कि इल्म अमल को आवाज देता है, जवाब पाए तो ठहर जाता है वरना चल देता है। तो इल्म वही जो कि जिसके जिसके मुताबिक हम जिंदगियों के अंधेरे फिर दूर किए जाए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.